आपको आज यौम विलादत नबी मुबारक हो, ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ये अल्लाह तबारक व ताला की यहाँ पे बड़ी इनायत है कि हम हजूर सलाम की उम्मत में से हैं। अल्लाह करे कि हमें उनकी नस्बत भी अता हो और हम उनकी तालीमात की पैरवी करके उनके उम्मती होने का हक अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये कल हमने लेक्चर नंबर 32 जो पढ़ा, एटम की थ्योरी, उसमें एक बात मैं आपकी तवज्जो दिला के तो फिर कि जिंदगी का जो मफहूम हजूर मुर्शिदे करीम ने इस चैप्टर में बयान किया कि ख्यालात का आना जो है, ख्यालात का बहाव जो है, इसी का नाम जिंदगी है। यानी हमारा हर फेल, हर हरकत किसी न किसी ख्याल के जेरे असर वकूफ पजीर हो रही है, यानी वाक्या हो रही है। और जब तक हम इस साइंस को नहीं समझते कि ये ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं, फिर वो कैसे तसव्वुर बनते हैं, कैसे वो एहसास बनते हैं, कैसे वो जिस्मानी अज़ा की तश्कील करते हैं और कैसे जिस्मानी अज़ा से काम लेते हैं, ये सारा निज़ाम जब तक आप नहीं समझेंगे, ये वहम करना ही कहलाएगा कि जी हमें, यानी फिर वहम हो सकता है कि जी हमें रूहानियत का पता चल गया या हमें पता चल रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम मिस्त्री बने, तो जाहिर है हमें गाड़ी के सारे कल पुर्जे जो होते हैं उनकी बाबत, उनकी फंक्शनिंग की बाबत पूरी तरह मालूम होना जरूरी है। तो हैविंग सेड दिस, ये बात चूंकि बहुत ही जरूरी है, इसको आप बहुत तवज्जो से जहन नशीन कर लें कि जिंदगी असल में कहते ही ख्यालात के बहाव को है। ये डेफिनेशन कहीं ओवरलुक ना हो जाए, मैंने इसलिए जसारत की कि आपकी तवज्जो इस डेफिनेशन की तरफ मबजूल कराऊं। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर लेक्चर नंबर 33 पढ़ेंगे, पेज नंबर 280, सफा नंबर 280। इस चैप्टर का उन्वान है हवास की तकसीम। अब ये हवास की तकसीम, यानी कि हवास क्या हैं, वो कैसे तकसीम होते हैं और ये क्या निज़ाम पूरे का पूरा जो है इसको किस तरह से हजूर मुर्शिदे करीम ने वाज़े किया है, वो ज़रा मुतालिया फरमाइए कि फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, अजराम फलकी, कहकशानी निज़ाम और दूसरी तमाम नौओं की इब्तदा और इंतहा, तमाम नौ की इब्तदा और इंतहा शऊर के रद्दो बदल पर कायम है। गौर करें, तमाम नौएं, चाहे वो फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं, इजराम फलकी है, कहकशानी निजाम है और दूसरी तमाम नौओं की इब्तदा और इंतहा, ये सारी की सारी शऊर के रद्दो बदल पर कायम है। यानी शऊर को और शऊर के रद्दो बदल को समझने वाला बंदा इन तमाम नौ की इब्तदा और इंतहा को समझने के काबिल हो जाएगा। हम इब्तदा को पैदाइश का मरहला कहते हैं, तो ला महला इंतहा को मौत का मरहला कहेंगे। हमारी महदूद तर्ज फिक्र में, हमारी महदूद समझ के मुताबिक हम इब्तदा को पैदाइश का मरहला कहते हैं। पैदा हुआ बच्चा तो हम कहते हैं ये अभी पैदा हुआ,
गौर करें तो क्या वो अभी पैदा हुआ? नहीं, उसकी तश्कील तो 10वां पहले शुरू हुई थी। बहरहाल उसको छोड़ें, तो अगर हम उसकी पैदाइश को इब्तदा कह रहे हैं इंसानी जिंदगी की, तो जाहिर है कि इंतहा किसको कहेंगे? मौत को। जैसे हम पैदाइश से पहले के मराहल से नाशना हैं, इसी तरह मरने के बाद भी जिंदगी जारी रहती है, हम उससे भी नाशना है। और करें, लेकिन जब मौत के मरहले पर तफक्कुर करते हैं तो मौत का मरहला भी हयात का एक कदम है, ये भी हयात का एक कदम है। ऐसी हयात का कदम जिस कदम के बाद दूसरा कदम भी हयात है, यानी देखें क्या खूबसूरत अल्फाज में पूरी बात बताती। हयात कहते हैं ख्यालात की तरफील को, ख्यालात के बहाव को। बहाव का रुख बदलता है, शक्ल बदलती है, उसके इजहार के तरीके बदलते हैं, बहाव नहीं रुकता। तो गोया मौत का मरहला भी हयात का एक कदम है, इसीलिए हम कहते हैं हयात बादुल मौत, मरने के बाद की जिंदगी। तो ऐसी हयात यानी के मरने के बाद, मौत का मरहला भी हयात का एक कदम है, ये जिंदगी का एक कदम है मौत जो है, और हमने इसी से खौफ खाना शुरू किया हुआ है। क्या मतलब हुआ कि हम आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं। तो और ये ऐसी हयात है कि जिस कदम के बाद दूसरा कदम भी हयात है, यानी उसका तो हर कदम हयात है। कायनात जिन हवासों और जिन शऊरों में हयात के मराहिल तय कर रही है, वो मुख्तलिफ कैफियात है, यानी मुख्तलिफ कैफियात के रद्दो बदल का नाम कायनात है। ये कायनात की डेफिनेशन सुन लें, मुख्तलिफ कैफियात के रद्दो बदल का नाम कायनात है। यानी कि इंसान अपनी सारी जिंदगी में जिन कैफियात से गुजरता है, उसमें जो रद्दो बदल होते रहते हैं, ये है इंसान की कुल कायनात। और अगर ये कायनात इज्तमाई तौर पे तमाम अनवा की जो कैफियात और उनमें जो रद्दो बदल हो रहा है उसका मजमुआ कर लिया जाए, तो ये गोया कायनात कहला रही है। अब आगे जरा समाज फरमाइए, हम शौरी एतबार से इतने कमजोर हैं कि किसी चीज को समझना चाहते हैं तो महदूदियत हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती है। यानी हम शऊरी एतवार से इतने कमजोर हैं कि किसी चीज को समझना चाहते हैं तो महदूदियत को अपने ऊपर मुसल्लत करके समझते हैं। अगर हम नजर के सामने बहुत बारीक सा कागज रख दें तो शऊर काम करना छोड़ देता है। इसी तरह जब हम इस महदूद कैफियत से निकलकर ला महदूद कैफियत में दाखिल होते हैं तो होता क्या है कि शऊर में तवानाई दाखिल हो जाती है, यानी शऊर तवाना हो जाता है। हम बयान कर चुके हैं कि फर्द का शऊर, नौ का शऊर, कायनात का शऊर और वराए कायनाती शऊर ही जिंदगी के मराहिल का तायुन करता है। यानी जिंदगी के मराहिल का तायुन ये चार शऊर कर रहे हैं, फर्द का शऊर, नौ का शऊर, कायनात का शऊर और वराए कायनाती शऊर, ये जिंदगी के मराहिल का तायुन करता है। ये मराहिल ही तो हैं, कि पहले वराय कायनाती सता, फिर कायनाती सता, फिर नौई सता, फिर इनफरादी सता। एक तो ये चार मरहले तो ये हो गए। अब असल बात ये है कि शऊर एक ही है और एक ही शऊर कायनात की हर शय में अलग अलग दौर कर रहा है। जैसे जैसे शऊर में हरकत हो रही है उसी मुनासिबत से शऊर में दर्जाबंदी हो रही है। अब यहां पे देखें एक और बहुत बड़ा मुगालता दूर हो गया कि ये जो हम चार शऊर बाज कह रहे हैं, सात शऊर बाज कह रहे हैं, 17 शऊर, ये सारे असल में शऊर एक ही है। अल्टीमेटली शऊर एक ही है और जैसे जैसे शऊर में हरकत होती है उसी मुनासबत से उसकी दर्जाबंदी होती है। फिर आगे उस दर्जाबंदी के नाम रखे हैं, कहीं हमने चार नाम रख दिए, कहीं तीन रख दिए, कहीं 17 रख दिए, कहीं 7 रख दिए। ये सबे समावात भी असल में शऊर के 7 दर्जे हैं। और ये जो चार नहरें या नौई शऊर और इनफरादी शऊर और कायनाती शऊर, ये भी शऊर के दर्जे हैं। तो एक ही शऊर काम कर रहा है पूरी कायनात में, ठीक हो गया। अल्लाह की तमाम सिफात का इहाता नहीं किया जा सकता, बल्कि अल्लाह की किसी एक सिफत का भी पूरी तरह इहाता नहीं किया जा सकता, क्योंकि मखलूक नहीं कर सकती, क्योंकि मखलूक महदूद है। तो जब मखलूक महदूद है तो वो लामहदूदियत को अपने अंदर तो नहीं समेट सकती, वो जितना भी उसका अपना शऊर बनता है उतना लामहदूदियत को समेटने या समझने में कामयाब होती है। कहते हैं ना हिस्सा ब कदरे जुस्सा, यानी जितना उसका शऊर का साइज आप बढ़ा लेते हैं उसी कदर आप लामहदूदियत को समझ लेते हैं, लेकिन वो जो कुछ समझ में आ गया वो हदूद में आ गया तो वो भी महदूदियत कहलाया। तो अल्लाह की चूंकि तमाम सिफात का इहाता नहीं किया जा सकता, इसलिए अल्लाह की सिफात लाम इतना ही है। अलबत्ता अल्लाह की उन सिफात का इल्म हमें हासिल है जिन सिफात को अल्लाह ने इल्म इलाहिया कहा है, यानी जिन सिफात को अल्लाह ने अपना इल्म कहा है उन सिफात का हमें इल्म हासिल हुआ, वो भी इसलिए कि अल्लाह ने मुतारिफ कराया। और ये सिफात वो लम्हा हैं जिस लम्हे के अंदर अल्लाह का इरादा जारी है। इस जुमले को समझने में कोई जल्दी ना करें प्लीज, इसमें बहुत बड़ा राज बयान करती है। ये सिफात जिनको इल्मुल इलाहिया कहा गया है, इल्म इलाहिया कहा गया है, ये सिफात वो लम्हा हैं, ये एक लम्हे की खेल है, वो लम्हा हैं जिस लम्हे के अंदर अल्लाह का इरादा जारी है। गौर करें, अल्लाह का इरादा यानी अल्लाह ने किसी चीज का इरादा किया, वो लम्हा जिसके अंदर अल्लाह का इरादा काम करने लगा या बना, ये वो लम्हा अल्लाह की जिन सिफात पे मुहित है हम उतने कोई समझ सकते। यानी इल्मुल इलाहिया क्या है, इल्मुल इलाहिया इल्म इलाहिया अल्लाह की वो सिफात क्या, वो लम्हा जिस लम्हे में अल्लाह ने इरादा किया, अल्लाह का इरादा जारी है जिस लम्हे के अंदर, ये लम्हा कौन सा लम्हा, वो लम्हा जब अल्लाह ने किसी चीज का इरादा किया। अगर मेरा और आपका जहन इस काबिल हो जाए कि हम ये चारों शऊरों से ऊपर उठकर उस लम्हे में पहुंच जाए तो पूरे कायनाती निजाम को समझ लेंगे। ये इतना बड़ा जुमला है जिसको इतने सहूलत से उन्होंने लिख दिया। अब ये सिफात वो लम्हा हैं जिस लम्हे के अंदर अल्लाह का इरादा जारी है। ये हजूर मुर्शिदे करीम ही का इजाज है कि वो इतनी बड़ी बात को इतने आसान, अब इससे देखें क्या आसान हो सकता है, साफ लिख दिया। अब इस बात को मुख्तसर अल्फाज में इस तरह कहा जा सकता है कि अल्लाह का इरादा ही जमाने मुसलसल है, यानी अल्लाह का इरादा जमा है, अल्लाह का इरादा जमा है, अल्लाह के इरादे के तहत, अल्लाह के इरादे में खदो खाल बनना कायनात है, अल्लाह का इरादा जमान है। अल्लाह का इरादा अगर जमान है, टाइम है, जिसको टाइम कह रहे हैं, वक्फे से मुराद पीरियड आ गया, वक्फे से मुराद ड्यूरेशन के लिए क्या लफ्ज आएगा, यानी वो जो अब हमारे पास अंग्रेजी का लफ्ज सेकंड है, ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए छोटे से छोटा हो तो वो सेकंड है, तो वो सेकंड यानी जिस सेकंड में अल्लाह ने कोई इरादा किया, अल्लाह का इरादा जमान है, अल्लाह का इरादा जमानियत है, और इरादे के अंदर अल्लाह के इरादे में बनने वाले खदोखाल, यानी अल्लाह ने इरादा क्या किया, उस इरादे के खदोखाल हैं, वो खदोखाल ही मकानियत है। मसलन अल्लाह रब्बे करीम ने चाहा कि एक कायनाती निजाम हो, तो पूरी कायनाती निजाम जो है ये सारे खदोखाल नहीं है, अल्लाह ने चाहा इसमें कहकशानी निजाम हो, कायनात में कहकशानी निजाम, तो कहकशानी निजाम खदोखाल हो गए। फिर आया कि भी कहकशां के अंदर सोलर सिस्टम्स हो, तो सोलर सिस्टम खदोखाल नहीं हुए। फिर सोलर सिस्टम में मिसाल है कि जैसे ये कुरे अर्द है, तो कुरे अर्द के खदोखाल हो गए, तो खदोखाल दर खदोखाल दर खदोखाल। तो ये सारा इरादा जो है असल में जमानियत क्या है, बिल्कुल एक नए पर्सपेक्टिव से जो टाइम की सारी डेफिनेशनें आपने आज तक पढ़ी हैं, बर्गसां से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक जितना भी इन्होंने टाइम पे जो कुछ भी कहा है, इस जुमले के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे उन्हें तो खबर ही नहीं कि असल में टाइम होता क्या। हजूर खिलंदर बाब औलिया ने और हजूर मुर्शिद करीम ने इस बात को देखे क्या आसान लफ्जों में लिख दिया कि अल्लाह का इरादा जमान है, अल्लाह का इरादा जमान है। आपको अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी बात, कितने से लफ्जों में कि अल्लाह का इरादा जमान है, और फिर अल्लाह के इरादे के तहत यानी उस इरादे की वजह से अल्लाह के इरादे में जो खदोखाल बने वो मकानियत है यानी स्पेस है। ये टाइम एंड स्पेस को अगर हम इस छोटे से जुमले से समझ लें तो सारा पर्सपेक्टिव बदल जाए, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं कि अल्लाह का इरादा ही जमानियत है, और वो एक लम्हा है, एक वक्फा है। अंबिया कराम की तालीमात की रोशनी में उस जात को समझने की कोशिश की जानी चाहिए जिस जात के अमर से कायनात वजूद में आई। अब अमर के दो मतलब हैं, एक हुक्म भी है और एक काम भी है। तो अंबिया कराम क्या कहते हैं कि अगर आप कायनात को समझना चाहते हैं, उसके कामों को समझना चाहते हैं, तो उस जात को समझें जिस जात ने वो काम किए हैं, जिस जात ने जो काम किए हैं, अगर आप उस जात को समझ लेंगे तो उसके किए हुए कामों को समझना आसान हो जाता है। ये है अंबिया कराम की तालीमात का लुब्बे लुबाब खलासा। दो लफ्जों में कि जिस काम को समझना चाहते हैं उस काम के करने वाले को समझ लो। अगर आप उसको समझ गए तो उसके किए हुए कामों को आप फौरन समझ जाएंगे। ये राज बता दिया अंबिया कराम ने। और जुमला क्या कहा कि उस जात को समझने की कोशिश की जानी चाहिए जिस जात के अमर से कायनात वजूद में आई है। जब तक जाते मुतलक को नहीं समझा जाएगा, जाते मुतलक, मुतलक का मतलब जिसका इतलाक हो, मुतलक का मतलब जो एब्सोल्यूट हो, जिसके साथ कोई और चीज शामिल ना हो, वो जाते मुतलक एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ सेल्फ, जब तक जाते मुतलक को नहीं समझा जाएगा, जाते मुतलक के अमर या हुक्म को समझना मुमकिन नहीं। कुछ लोग इस बात पर मोतरिज हैं, ये सूफियों में बहसें चलती कि अमर को समझना या जाते मुतलक के इरादे को समझना किस तरह मुमकिन है। यानी अमर को समझना, ये असल में बहस जो रही है ये अमरे रब्बी के लफ्ज से चली, ये जो सारी बहस है इसका पसे मंजर ये अमर को समझना अमरे रब्बी को समझने की बात हो रही है। कि अमर को समझना यानी अमरे रब्बी, कहा ना कि ये रूह क्या है, तो क्या सलूना का अनर रूह, ये आपसे रूह की बाबत पूछते हैं, कुल्लो रूहम में नमरे रब्बी, तो इस पे बहसें होती हैं कि अमरे रब्बी को कैसे समझा जाए। तो उसका अंबिया कराम कहते हैं भाई रब को समझोगे तो अमरे रब्बी समझ आ जाएगा। अब यहां पे ये उस बहस की तरफ इशारा करके कहा कि मोतरिज हैं यानी वो एतराज करते हैं। अब एतराज का लफ्ज अर्ज से है, अर्ज मैंने चौड़ाई, अर्ज मैंने पहलू तही, अर्ज मैंने बचना। अब आप गौर करें मोतरिज हैं यानी कि वो पहलू बचाते हैं या इस पे एतराज करते हैं। ये लफ्ज एतराज किसी की पसली पे मारने को एतराज कहते हैं। अब इस बात पर मोतरिज हैं कि अमर को समझना यानी अमर क्या है, जाते मुतलक के इरादे को। अभी ये बात इस ऊपर के पैराग्राफ में वाजे की कि अल्लाह की जात का इरादा जो है वो अमर है, तो अमर को समझना यानी जाते मुतलक के इरादे को समझना ये किस तरह मुमकिन है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब बातों का जवाब, इंसान के सवालों का जवाब अल्लाह तबारक व ताला जल्ले शानहू के अल्फाज में, कोई आंख अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, अल्लाह आंख का इदराक बन जाता है। आयत है ना, ला तुद्रकुल अबसारा वा हो वा युद्रकुल अबसारा, कोई आंख अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, अल्लाह आंख का इदराक बन जाता है, युद्रकुल अबसारा इदराक बन जाता है, अल्लाह खुद इदराक बनता है। आंख की मजाल नहीं है कि वो अल्लाह का इदराक करे। जब तक इंसान अपनी कुन्हा से वाकिफ नहीं होता, अपनी कुन्हा, कुन्हा कहते हैं वो रूट कॉज, वो चीज, वो जड़ जहां से वो बीज की, बीज में से निकला, वो जगह, वो असली खाना जहां से वो उगा, जहां वो उसकी असल तखलीक हुई, उसे कुन्हा कहते हैं। और जब तक इंसान अपनी कुन्हा से वाकिफ नहीं होता, उसका जहन जाते मुतलक की तरफ मतवज्जो नहीं होता। जब इंसान खुद से वाकिफ हो जाता है तो वो अपने अंदर अल्लाह के अमर से वाकिफ हो जाता है, ये अमरे रब्बी यानी रूह से वाकिफ हो जाता है। यानी रूह क्या है, अल्लाह का काम है, यानी अल्लाह का एक हुक्म है जो के काम की सूरत में मुतहरिक है। तो जब तक इंसान अमर को नहीं जानता, अपनी जात से वाकिफ नहीं होता, जरा गौर करें उसकी दूसरी मिसाल, वो भी कुरान से, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर रोशनी देख कर सवाल किया कौन, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं हूं तेरा रब। अब ये दो लफ्ज हैं, हजरत मूसा ने सवाल किया कौन, आगे से जवाब आया मैं हूं तेरा रब। अब एक के एक लफ्ज के एक लफ्जी सवाल, यक लफ्जी सवाल के जवाब में चार लफ्जी जवाब, मैं हूं तेरा रब, इन्नी रब्बों का, मैं हूं तेरा रब, अरबी में दो लफ्जी जवाब है। हजरत मूसा की जाते गरामी, अल्लाह का अमर है, हजरत मूसा को क्या कहेंगे, अल्लाह का अमर, अमरे रब्बी, और खुद अल्लाह, अल्लाह की जात जो है वो जाते मुतलक है। अब एक तरफ जाते अमर है और दूसरी तरफ जाते मुतलक है, यानी हजरत मूसा ने जो रोशनी देखी वो रोशनी अमरे रब यानी जाते मुतलक थी, साफ बता दिया कि वो रोशनी जो हजरत मूसा ने देखी वो जाते मुतलक की रोशनी थी। इस वाक्य से जाते मुतलक और अमर की हदूद का तायुन हो जाता है, यानी इस वाक्य से पता चल गया कि जाते मुतलक क्या है और अमर की हदूद क्या है। अब इससे क्या बातें सामने आई, सामने यह आया कि हजरत मूसा अल्लाह का अमर है और हजरत मूसा ने अमर को रोशनी में मुशाहदा करने के बावजूद ये सवाल किया कि कौन, यानी अमर ने यानी अमरे रब्बी ने इस बात की एहतियाज महसूस की, उसको जरूरत महसूस हुई कि वो जाते मुतलक को पहचाने, तभी तो पूछा कौन। आगे से हजरत मूसा ने रोशनी देखकर ये नहीं जान लिया कि ये मेरा रब है, ये हजरत मूसा के ज़हने नारसा की बात बता दी कि अभी उनका ज़हन इस काबिल नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक उनको नबुवत तो नहीं मिली थी, तो इसलिए वो नहीं जान सके कि ये असल में मेरा रब है। हजरत मूसा को इस बात की एहतियाज हुई कि रोशनी अमर से अपना तारुफ कराए, तो हजूर कलंदर बाबा औलिया फरमाते हैं बाज लोगों ने अपने पैराया बयान में, यानी अपने उनका स्टाइल है बयान करने का, जाते मुतलक को हकीकते मुतलका कहा है, हकीकते मुतलका यानी एब्सोल्यूट रियलिटी का है और अमर को कायनात का है। गौर करें, बाज लोगों ने अपने पैराया बयान में जाते मुतलक को हकीकत मुतलका कह दिया और अमर को कायनात कह दिया। अब ये पैराया बयान हुक्माए रब्बानी का है, हुक्माए रब्बानी। अब हुक्माए रब्बानी से मुराद वो लोग हैं जिनके अंदर तफक्कुर और तलाश है, और जो लोग अपने शऊर की सतह से निकलकर लाशऊर में दाखिल होने के बाद कायनात को समझने की कोशिश करते हैं, ये सब लोग हुक्माए रब्बानी के जुमरे में शामिल हैं। अब हुक्माए रब्बानी यानी गोया इसमें तमाम साइंसदान और तमाम फिलोसफर्स आ गए, वो जो शऊर से निकलकर लाशऊर में दाखिल हुए और वहां से उन्होंने कायनात को समझने की कोशिश की। फर्क देखिए, ये हुक्माए रब्बानी का अंदाज है, हुक्माए रब्बानी के बरक्स अंबिया कराम की अलग तरह फिक्र है। हुक्मा और अंबिया में बहुत बड़ा फर्क है, क्या फर्क है, अंबिया कराम इल्मे हजूरी से हकीकत मुतलका को तलाश करते हैं। और हुक्माए रबानी मज़ाहिर से कुन्हा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये नोट कर लें ये फर्क। जितने फिलोसफर्स हैं, जितने साइंसदान हैं, वो क्या करते हैं, मज़ाहिर से उनकी कुन्हा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि ये अमल कानून फितरत के मुताबिक नहीं है। यानी गौर करें कि वो जिस्म को देखकर रूह को ढूंढ रहे हैं, हालांकि अंबिया कराम बता रहे हैं कि पहले रूह को तलाश कर लो, रूह तलाश कर लोगे तो जिस्म तक पहुंचना वो मराहिल सारे वाजे हो जाएंगे। बस इतना सा फर्क है, ये इतना सा फर्क बहुत बड़ा फर्क है। अंबिया बातिन से जाहिर को तलाश करते हैं, जबकि हुकमा और दानिश्वर जाहिर से बातिन को तलाश करते हैं। ये दोनों तर्जें अपनी अपनी जगह सही है, और सही होने की वजह ये है, ये वजह देख लीजिए कि जाहिरी उलमा चूंकि बातिन से बेखबर हैं, इसलिए वो जाहिर को रखकर, जाहिर को सामने रखकर जाहिर की कुनाह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब उनके ऊपर मख्फी चीजों का इंकशाफ नहीं होता तो वो मख्फी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इस तर्ज फिक्र से कायनात की साख्त में बहुत सारे हकायक सामने नहीं आते, जबकि अंबिया की तलाश या अंबिया कराम क्या अंदाजे नजर या तरीका फिक्र जो है वो इस नुक्स से पाक है, वो कायनात की हकीकत को समझने से पहले, कायनात की हकीकत को समझने के लिए पहले उस हस्ती का इदराक करते हैं जिस हस्ती ने कायनात को तख्लीक किए। ये अंबिया कराम की तर्ज फिक्र और हुक्माए रब्बानी की तर्ज फिक्र का फर्क यहां पे वाजे हो गया। ये मेरा ख्याल है यहीं पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है वो फिर चैप्टर लंबा, बात लंबी हो जाएगी तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ये बात आज के हमने चैप्टर में ये पढ़ी कि सारी की सारी चीजें जो हैं ये टाइम एंड स्पेस की डेफिनेशन आपने रिविजिट की कि वो लम्हा जिसमें इरादा है, यानी अल्लाह का इरादा जो है वो एक लम्हे को तख्लीक कर रहा है, वही लम्हा जमानियत है, और उस लम्हे में यानी उस इरादे में जो खदोखाल है वो कायनात है। उसके बाद दूसरी बात ये बताई कि सारी बात को समझने के दो तरीके हैं, एक है अंबिया कराम का तरीका और एक है हुक्माए रब्बानी का तरीका। हुक्माए रब्बानी के तरीके में यानी जिसमें तमाम साइंसदान और फिलासफर्स आ गए, वो जाहिर को देखकर बातें तक जाना चाहते हैं या उसकी कुन्हा तक, लेकिन अंबिया कराम हर चीज के बातें से बात शुरू करते हैं तो उसके जाहिर को समझना उनके लिए आसान हो जाता है, इसलिए वो किसी भी चीज की तख्लीक, किसी भी चीज या किसी भी मखलूक को देखकर, किसी भी तख्लीक को देखकर उस तख्लीक के जरिए खालिक के कायनात तक नहीं जाते, खालिक तक नहीं जाते, बल्कि खालिक को समझकर जब तख्लीक की तरफ जाते हैं तो उनको हर चीज वाजे दिखती है या वाजे तौर पे समझ आती है। तो ये बात यहां पे मेरा ख्याल है रुक जाते हैं। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखे, थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे जी, बहुत नवाजिश आपकी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह